नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन आर ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। ब्रेंडन केन की पुस्तक 1 मिलियन फॉलोअर्स अपडेटेड एडिशन सोशल मीडिया वृद्धि और डिजिटल मार्केटिंग पर केंद्रित एक व्यावहारिक गैर कथा पुस्तक है। इसका उद्देश्य यह समझाना है कि बड़ी ऑनलाइन ऑडियंस बनना केवल प्रसिद्धि, भाग्य या लगातार पोस्ट करने का परिणाम नहीं है, बल्कि परीक्षण, माप और तेज सुधार की व्यवस्थित प्रक्रिया है। केन अपने उस प्रयोग को आधार बनाते हैं जिसमें उन्होंने बिना पहले से स्थापित सार्वजनिक पहचान के बहुत कम समय में विशाल फॉलोअर आधार बनाने का प्रयास किया। पुस्तक विशेष रूप से फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और लिंक्डइन जैसे मंचों पर सामग्री वितरण और ऑडियंस व्यवहार के संबंध को देखती है। अपडेटेड संस्करण में लीड जनरेशन, ई कॉमर्स और प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया विपणन जैसे व्यावसायिक उपयोगों पर भी ध्यान दिया गया है। इसका केंद्रीय संदेश यह नहीं है कि हर व्यक्ति निश्चित रूप से 30 दिनों में 10 लाख फॉलोअर पाएगा, बल्कि यह है कि रचनाकार और ब्रांड अनुमानों के बजाय वास्तविक प्रतिक्रिया के आधार पर अपनी सामग्री को अधिक प्रभावी ढंग से विकसित कर सकते हैं। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, हाइपोथेसाइज टेस्ट पिवट का चक्र अनुमान को सीखने की प्रक्रिया में बदलता है। पुस्तक का सबसे उपयोगी ढांचा हाइपोथेसाइज टेस्ट पिवट है। इसका अर्थ है कि सामग्री बनाने से पहले यह स्पष्ट अनुमान लगाया जाए कि किस ऑडियंस के लिए कौन सा संदेश, दृश्य, शीर्षक या प्रस्तुति शैली काम कर सकती है। इसके बाद उस अनुमान को सीमित लेकिन मापने योग्य परीक्षण से परखा जाता है। प्रतिक्रिया में केवल लाइक या कुल व्यू नहीं, बल्कि शेयर, देखने की अवधि, टिप्पणियां, क्लिक और फॉलो जैसी गतिविधियों का महत्व है। यदि परिणाम अपेक्षा के अनुरूप न हो तो पिवट का मतलब पूरी रणनीति को भावनात्मक रूप से बचाने के बजाय उसका कोण, संदेश, लक्षित समूह या प्रारूप बदलना है। केन का दृष्टिकोण सोशल मीडिया को प्रकाशित करने का माध्यम भर नहीं, बल्कि तेज बाजार अनुसंधान की जगह मानता है। इस प्रक्रिया की ताकत यह है कि यह रचनात्मक निर्णयों को प्रमाण से जोड़ती है। हालांकि परीक्षण तभी उपयोगी होगा जब एक समय में बहुत अधिक चर न बदले जाएं, क्योंकि अन्यथा यह जानना कठिन होगा कि सफलता या असफलता किस कारण से आई। पुस्तक इसलिए सहज अनुमान से आगे बढ़कर अनुशासित पुनरावृत्ति की मांग करती है। दूसरा, हुक पॉइंट शुरुआती क्षणों में ध्यान जीतने की रचनात्मक और रणनीतिक कसौटी है। केन के अनुसार डिजिटल फीड में सामग्री की पहली चुनौती गुणवत्ता सिद्ध करना नहीं, बल्कि पहले कुछ क्षणों में रुकने का कारण देना है। इसी को पुस्तक हुक पॉइंट के विचार से समझाती है। हुक कोई भ्रामक शीर्षक या केवल सनसनी नहीं होना चाहिए। उसका काम दर्शक को तुरंत यह संकेत देना है कि आगे की सामग्री उनके लिए क्यों प्रासंगिक, उपयोगी, आश्चर्यजनक या भावनात्मक रूप से अर्थपूर्ण है। वीडियो में अनावश्यक भूमिका को छोटा रखना, संदेश को जल्दी स्पष्ट करना, ध्वनि बंद होने पर भी समझ आने वाले दृश्य और उपशीर्षक उपयोग करना इसी सिद्धांत के व्यावहारिक रूप है। पुस्तक यह भी संकेत देती है कि शेयर होने वाली सामग्री अक्सर दर्शक की पहचान, भावना या किसी उपयोगी विचार से जुड़ती है। इसलिए केवल उत्पाद की प्रशंसा करने वाली पोस्ट की तुलना में ऐसी सामग्री अधिक प्रभावी हो सकती है जिसे लोग अपने मित्रों के साथ जोड़कर देख सकें। हुक के बाद सामग्री को अपने वादे पर खरा उतरना पड़ता है। मजबूत शुरुआत के बाद कमजोर या असंबद्ध प्रस्तुति अल्पकालिक क्लिक तो दे सकती है, पर भरोसा और दीर्घकालिक ऑडियंस नहीं बनाती। तीसरा, शेयर योग्यता को फॉलोअर संख्या से अधिक महत्वपूर्ण वितरण शक्ति माना गया है। 1 मिलियन फॉलोअर्स का एक महत्वपूर्ण तर्क यह है कि तेज वृद्धि का वास्तविक इंजन सामग्री का साझा किया जाना है। भुगतान से किसी पोस्ट तक प्रारंभिक पहुंच खरीदी जा सकती है, लेकिन जब लोग उसे स्वेच्छा से दूसरों तक पहुंचाते हैं तब वितरण की लागत और बढ़ने की संभावना दोनों बदलती है। केन इसीलिए पूछने को प्रेरित करते हैं कि कोई व्यक्ति किसी सामग्री को अपने मित्र, परिवार या समुदाय के साथ क्यों साझा करेगा। उत्तर सामान्यतः आत्मप्रचार में नहीं, बल्कि भावना, उपयोगिता, पहचान, मनोरंजन या बातचीत शुरू कराने वाले विचार में मिलता है। प्रत्येक पोस्ट को स्वतंत्र रूप से समझ में आने योग्य रखने का सुझाव भी इसी संदर्भ में उपयोगी है, क्योंकि नया दर्शक पहले के भागों या ब्रांड इतिहास से परिचित नहीं होता। पुस्तक का जोर कृत्रिम रूप से फॉलो मांगने के बजाय सहभागिता का वास्तविक कारण देने पर है। यह दृष्टि संख्या के पीछे छिपी गुणवत्ता की समस्या भी उजागर करती है। निष्क्रिय या असंबद्ध फॉलोअर किसी ब्रांड के लिए सीमित उपयोग रखते हैं, जबकि सही लोगों द्वारा साझा की गई सामग्री नए प्रासंगिक दर्शक ला सकती है। अतः पुस्तक पहुंच को केवल विज्ञापन परिणाम नहीं, सामाजिक अनुशंसा के रूप में भी देखती है। चौथा, भुगतान आधारित प्रसार को खर्च नहीं, नियंत्रित परीक्षण और बाजार अनुसंधान का साधन माना गया है। पुस्तक की तेज वृद्धि वाली पद्धति में भुगतान आधारित वितरण की भूमिका स्पष्ट है। केन इसे केवल ज्यादा लोगों तक विज्ञापन पहुंचाने के साधन के रूप में नहीं देखते, बल्कि अलग अलग संदेशों और ऑडियंस समूहों के प्रतिक्रिया जानने के तंत्र के रूप में प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण के लिए, एक ही विचार के भिन्न शीर्षक, आरंभिक दृश्य या लक्षित समूहों के साथ परिणामों की तुलना की जा सकती है। इससे यह संकेत मिलता है कि कौन सी रचनात्मक दिशा आगे निवेश के योग्य है। यह बात पुस्तक को उन सामान्य सोशल मीडिया पुस्तकों से अलग करती है जो केवल जैविक पहुंच या पोस्टिंग नियमों पर निर्भर रहती हैं। फिर भी इस मॉडल की सीमा भी है। पर्याप्त बजट, विज्ञापन मंच की समझ और सही मापन के बिना भुगतान आधारित प्रचार महज महंगी दृश्यता बन सकता है। बड़ी संख्या में सस्ते फॉलोअर पाने और व्यवसाय के लिए उपयोगी भरोसेमंद ऑडियंस बनाने में अंतर है। इसलिए पाठक केन की विधि को बजट के अनुपात में छोटे प्रयोगों से अपना सकते हैं। मुख्य सीख खर्च बढ़ाना नहीं बल्कि सीमित संसाधनों से तेज और विश्वसनीय सीख हासिल करना है। अंत में हर मंच की प्रकृति के अनुसार प्रारूप बदलना बहु मंच ब्रांड बनाने की शर्त है। केन फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और लिंक्डइन सहित कई मंचों पर उपस्थिति बनाने की चर्चा करते हैं, लेकिन उनका अर्थ एक ही पोस्ट को हर जगह यांत्रिक रूप से दोहराना नहीं है। प्रत्येक मंच पर उपयोगकर्ता की अपेक्षा, सामग्री देखने का संदर्भ और सहभागिता का तरीका अलग हो सकता है। इसलिए मूल संदेश स्थिर रखते हुए उसकी लंबाई, दृश्य गति, शीर्षक, अनुपात और बातचीत की शैली बदलनी पड़ सकती है। पुस्तक के दृष्टिकोण में किसी सफल प्रारूप की पहचान करना उपयोगी है, क्योंकि सिद्ध कहानी संरचनाएं रचनाकार को बार बार शून्य से शुरू करने से बचाती हैं। लेकिन प्रारूप की नकल और ब्रांड के अनुकूल रूपांतरण अलग बातें हैं। यदि किसी रुझान का संबंध ब्रांड की आवाज, क्षमता या ऑडियंस की जरूरत से नहीं है, तो वह अस्थायी व्यू दे सकता है लेकिन स्थायी पहचान नहीं। अपडेटेड संस्करण में सोशल ऑडियंस को लीड जनरेशन, ई कॉमर्स और प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया विपणन से जोड़ने की चर्चा इस मुद्दे को व्यावसायिक संदर्भ देती है। फॉलोअर वृद्धि का मूल्य तब अधिक है जब सामग्री, समुदाय और आगे की ग्राहक यात्रा एक दूसरे से तार्किक रूप से जुड़े हों। निष्कर्ष में यह पुस्तक उद्यमियों, स्वतंत्र रचनाकारों, विपणन पेशेवरों और उन छोटे व्यवसायों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जिन्हें सोशल मीडिया पर अधिक सुनियोजित ढंग से ऑडियंस बनानी है। इसे उन पाठकों को भी पढ़ना चाहिए जो सामग्री निर्माण को केवल कलात्मक अभिव्यक्ति नहीं बल्कि प्रतिक्रिया आधारित संचार और बाजार समझने की प्रक्रिया के रूप में देखना चाहते हैं। व्यावहारिक लाभ इसकी परीक्षण मानसिकता में है। पाठक संदेश, हुक, ऑडियंस और प्रारूप के बारे में अस्पष्ट बहस करने के बजाय छोटे प्रयोग बनाना, उपयुक्त संकेतकों को देखना और परिणाम के अनुसार सुधार करना सीख सकते हैं। पुस्तक की अलग पहचान इसकी तीव्र वृद्धि वाली केस स्टडी और भुगतान आधारित वितरण के अपेक्षाकृत स्पष्ट उपयोग में है। कई सोशल मीडिया मार्गदर्शिकाएं नियमितता, हैशटैग या मंच विशेष युक्तियों तक सीमित रहती हैं, जबकि केन सामग्री की शेयर योग्यता, प्रारंभिक ध्यान, मापन और वितरण को एक ही प्रणाली के हिस्सों की तरह रखते हैं। फिर भी शीर्षक में दिए गए 30 दिनों के लक्ष्य को सार्वभौमिक वादा नहीं समझना चाहिए। परिणाम बजट, सामग्री की गुणवत्ता, लक्षित बाजार, मंच की नीतियों और निरंतर निष्पादन पर निर्भर करते हैं। जैविक वृद्धि पर ही निर्भर रचनाकारों के लिए इसकी कुछ रणनीतियां कम सुलभ लग सकती हैं। बावजूद इसके पुस्तक का स्थायी योगदान यह है कि यह वायरलता को रहस्य मानने के बजाय परीक्षण योग्य प्रक्रिया मानती है। इसी कारण यह केवल फॉलोअर गिनती नहीं बेहतर डिजिटल निर्णय लेने के लिए भी उपयोगी मार्गदर्शिका है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं ब्रेंडन केन, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।